તારીખ 18/8/1998 શ્રી સમયસર ગાથા 19 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 48
हो सकता है प्रयोग और प्रयास करने वाले जीव को कि ये प्रतिबंध पतला हो जाए, फिक्का हो जाए, मंद हो जाए, ऐसा बनता है, लेकिन टूटता नहीं, जाता नहीं।
तो प्रतिबंध पतला होना या हल्का मंद होना, हाँ। ये लाभकारी नहीं है?
लाभकारी है, अवश्य लाभकारी है, और प्रयास तो चलता ही है मोक्षों का। उदय के काल में निरंतर लगातार लगन से वो प्रयास करता है कि मैं अपनापन मेरे को क्यों हो रहा है, कि अपनापन मैं परिवार के सदस्यों को मेरे हैं ऐसी मेरी नजर क्यों नहीं मिलती, मेरी ये नजर क्यों बदलती नहीं है, मेरे पर मेरा पना क्यों आता है। और प्रारब्ध ठीक हो, अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता नहीं हो, ऐसी जो बुद्धि है वो तो द्रव कर्म में अपने पर है। ये सुख बुद्धि और आधार बुद्धि के कारण से बनता है। कर्ता बुद्धि तो है ही और एकत्व बुद्धि तो है ही। जब भाव वासन होता है, स्वरूप निश्चय होता है, निज परमात्मा का निश्चय होता है, निर्णय होता है, तब स्वरूप में अपनत्व की बुद्धि होती है, अभिप्राय पकड़ता है। ये बुद्धि जो होती है तो वृत्ति बुद्धि छूटती है, क्यों कहीं मेरा अपनत्व नहीं है, तो नजर बदल जाती है, यहाँ से नजर बदल जाती है कि मेरे नहीं है। जैसे पड़ोसी है वैसे वो भी है, जैसे दुनिया के लोग हैं वैसे वो भी है। कर्म संयोग से संयोग में रहना बनता है, अलग बात है, लेकिन अपना तो दिखता नहीं,
बराबर
अभिप्राय पलट जाता है। सुख बुद्धि भी पलट जाती है क्योंकि अनंत सुख के निधान का निश्चय हुआ है,
बराबर
ये निश्चय होने से ही अनुभूति स्वरूप जो भगवान आत्मा है
जी।
उसका जो वेदन है, ज्ञान वेदन जिसको बोलते हैं, वो ज्ञान वेदन पकड़ में आता है, अनुभव में आता है आंशिक रूप से। वेदन से आत्मा पहचाना और पहचान के बाद जो ज्ञान बल से पुरुषार्थ चला, उस पुरुषार्थ से फिर निर्विकल्प प्रश्न वेदन आया, और इस संवेदन आत्मा के अनुभव के अपूर्व रस से उत्पन्न होने के कारण से उसकी एक परिणति भी बनी, जिसको ज्ञानी की अंतर परिणति कहते हैं, जिसको ज्ञान दशा कहते हैं, जिसको ज्ञान धारा भी कहते हैं और इसको अमृत धारा भी कहते हैं। ये परिणति मजबूत होती वेद ज्ञान के प्रयोग से, वेद ज्ञान का प्रयोग चालू रहता है, मजबूत होती जाती है, तगड़ी होती जाती है, और ये बाहर जाने वाले विकल्प को खींच करके फिर स्वरूप में ले आता है। जैसे पतंग की डोरी हो वैसे उपयोग रूप पतंग इधर उधर गुलाट खाता है, तो परिणति रूप डोरी उसको खींच करके स्वरूप में ले आते हैं। और ये परिणति जितनी मजबूत उतने गुण स्थान में, एक ही गुण स्थान में दशा भी मजबूत
बराबर,
ऐसा समझना चाहिए। टीका में दृष्टांत लिया है आचार्य महाराज ने, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों में एक घड़ा का दृष्टांत लिया है, तथा चौड़ा गहरा अवगंध उदरादि के आकार परिणत हुए उद्गल के स्कंधों में यह घट है, घड़ा है, इस प्रकार और घड़े में क्या है, यह स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव तथा चौड़े गहरे उदराकार आदि रूप परिणत हुए दुर्गल स्कंध है, इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है। घड़ा का आकार और घड़ा के उद्गल गुण की पर्याय उनसे, उन पर्यायों से वस्तु की अभेदता होने से वस्तु की अनुभूति होती है। और भी एक दृष्टांत ले लें कि जैसे हम शक्कर या द्राक्ष खाते हैं, अनुभव होता है मुख्य तौर से उस पुद्गलों के रस गुण की पर्याय का, जैसे द्राक्ष खट्टी मीठी है, अच्छी क्वालिटी की हो सकती है, अनुभव किसका होता है, इसके रस गुण की अवस्था का। लेकिन हम वस्तु के अभेद से अनुभव करते हैं, हम क्या अनुभव करते हैं कि हमने उनको द्राक्ष मीठी लगी, हमको द्राक्ष अच्छी लगी। यहाँ पर हम प्रयोग किस तरह चलता है इस पर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि प्रयोग कैसे होता है। इस दृष्टांत में समय सार के एक एक गाथा में प्रयोग की विधि का संकेत है, सिर्फ परिभाषा नहीं की, प्रयोगात्मक शैली है आचार्य महाराज की। वस्तु के अभेद से पर्याय के दौरान अनुभव होना, ये अनुभव की एक प्रैक्टिकल साइड है, ये प्रयोग पद्धति है। अनुभव तो होता है रसगुण की पर्याय का, लेकिन पर्याय तो यहाँ गौण हो जाता है और वस्तु मुख्य हो जाती है। हम कहते हैं कि हमने द्राक्ष खाई, क्या कहते हैं, हमने द्राक्ष खाई। ठीक इसी तरह जिसको भीतर में ज्ञान वेदन से वस्तु के अभेद अनुभूति होती है, उनको ऐसा अनुभव होता है कि हमको आत्मा का अनुभव हुआ। किसका अनुभव हुआ,
आत्मा
का अनुभव हुआ। इसलिए इसकी आगे वाली गाथा जो 17-18 गाथा है उसमें ऐसा लिया है कि ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, इसका निरंतर अनुभव आबाल गोपाल समूह को होता है। अब विद्वत जन ये इसमें तर्क उठाते हैं कभी कभी कि महाराज आत्मा का अनुभव आते हैं तो निर्विकल्प आनंद की अनुभूति भी होती है, और हमें तो कभी आनंद की अनुभूति हुई नहीं, पर आप कह रहे हैं कि निरंतर स्वभाव को होता है अनुभव, आत्मा का ही अनुभव होता है, ये बात गले उतरती नहीं है। तो यह आगे कहा कि क्यों तुमको ये बात मालूम नहीं पड़ती, तुमको अनुभूति तो तुमको भी है, लेकिन मालूम क्यों नहीं पड़ती कि पर के साथ एकत्व पनाता निश्चय होने से ये निश्चय भाव वासना के कारण बदलता है।
बराबर,
ये निश्चय मिटता है तब ये अनुभूति पकड़ में आती है, अनुभूति की परिणति, अनुभूति की पर्याय पकड़ में आती है। और ये विज्ञान के प्रयोग से, ये अनुभूति के अंश से ही निश्चय हुआ है और ज्ञान बल पैदा हुआ है, और ज्ञान बल आगे बढ़कर के पुरुषार्थ आगे बढ़कर के निर्विकल स्वानुभव होते ही जो पर्याय दृष्टि है, जो मिथ्या दृष्टि है, वो पलट करके सम्यक दृष्टि और दृढ़ दृष्टि हो जाता है उसी काल में। इसके पहले सारा प्रोसेस ज्ञान का होता है, तभी दृष्टि उल्टी पड़ी है और चारित्र गुण में शुभ अशुभ राग है। एक ज्ञानी खुला है जिसको हम साधन बना सकते हैं, प्रयोग साधन बना सकते हैं प्रयोग का, और यहाँ से हमारा काम बनता है। तो इस तरह से एक जिस प्रयोग से अनित्य से नित्य पर जाया जाता है,
हाँ जी,
पर्याय से ध्रुव पर जाया जाता है,
ज्ञान
यही एकमात्र विधि है, दूसरी कोई विधि नहीं है, ये प्रयोग की विधि है।
लक्षण द्वारा लक्ष्य की ओर,
हाँ, लक्षण द्वारा लक्ष्य को पहचाना, लक्ष्य को लक्ष्य में ले लिया, तब तो होगा, एक हमारा निश्चय हो गया।
ज्ञात से अज्ञात की ओर ये कहते हैं,
ज्ञान से
ज्ञात से फ्रॉम नोन टू अननोन।
हाँ ठीक है, इसमें क्या है कि जो ज्ञान की अवस्था है वहाँ जो ज्ञान वेदन है वही अनुभूति स्वरूप आत्मा है। क्या है वही? अभेदनय से या वस्तु की अभेदता से वो ही आत्मा है, उसको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बोला है। अनुभूति स्वरूप आत्मा तो नहीं बोला, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बोला है, मैंने निश्चय आत्मा बोला है। इसलिए कभी कभी ये प्रश्न उठता है मुमुक्षुओं को कि हमारे पास कौन सा आधार है कि जहाँ से हम आत्मा को पकड़े, ग्रहण करें।
हाँ जी,
आत्मा एक अनुभवनीय पदार्थ होने से इसका ग्रहण की विधि में वो अनुभव में आता है, विचार की विधि में वो अनुभव में
नहीं आता,
नहीं आता।
अनुमान में आता है,
अनुमान में आता है तो भी
नहीं।
अनुमान करने से कल्पना का, कल्पना की संभावना है। ये बात जयचंद जी ने 246 नंबर के कलश में कही, एक अच्छी बात है, वो थोड़ा ध्यान लेने योग्य है। 415 गाथा टीका पूरी करके आखिरी कलश बनाया आचार्य महाराज ने कि इति इति, मैंने अभी पूर्ण कर रहे हैं टीका को, समाप्त कर रहे हैं, इति ऐसा करके लिखा है कि इति इदम आत्मनः तत्त्वं ज्ञान मात्रं व्यवस्थितम्। क्या कलश में चरण, पहला चरण है कि इति इदम आत्मनः तत्त्वं ज्ञान मात्रं व्यवस्थितम् अखंडम एकम अचलम स्वसंवेद्यम बाधितम्। क्या कहते हैं, बहुत मीठा कलश है कि ये जो आत्मा का तत्व है, क्या आत्मा तत्व नहीं है? तो कि एक तत्व का भी एक तत्व है क्या? आत्मा का तत्व, आत्मनः तत्त्वम्, आत्मा का तत्व बोला कि ज्ञान मात्र है वो आत्मा का तत्व है। क्या कहा? ज्ञान मात्र अवस्थितम, सारे समय सार में जगह जगह पे आचार्य महाराज कहते हैं कि ये आत्मा ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र है। क्या कहना चाहते हैं कि द्रव्य का भेद रूप नहीं, गुण का भेद रूप नहीं और पर्याय का भेद रूप नहीं, अनुभव स्वरूप ज्ञान मात्र मैंने अनुभव स्वरूप। एक बहुत दृष्टांत का स्मरण आता है कि देखिए हम किसी भी मनुष्य को देखेंगे तो तीन अवस्था में देखेंगे, या तो वो बाल अवस्था में होगा, या तो युवान अवस्था में होगा, या तो वृद्धावस्था में होगा। लेकिन हमारे जिनेंद्र परमात्मा अरिहंत परमात्मा की मूर्ति को देखेंगे तीन में से एक ही अवस्था में नजर में आएगी,
नहीं आएगा, बराबर है,
न बाल है न युवान भी है और न वृद्ध भी है। देखिए
बराबर
है ना, चमत्कारिक बात
जी,
ध्यान में लेने योग्य बात है। ऐसे हमारे निज परमात्मा जो है न केवल द्रव्य रूप है, न केवल गुण रूप है, न केवल पर्याय रूप
है,
तीनों के एक भी भेद रूप नहीं होते हुए भी तीनों में व्यापक है,
बराबर,
द्रव्य में भी व्यापक है, गुण में भी व्यापक है और पर्याय में भी व्यापक है। और पर्याय का उपकार उतना है कि वो वहां से पाया जाता है। ये बात जयचंद जी 246 नंबर के कलश के भावार्थ में कहते हैं कि यहाँ आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है, ज्ञान मात्र कहा है। इसका कारण यह है कि आत्मा में अनंत धर्म होते हुए भी आत्मा को ज्ञान के सिवा दूसरे गुण से पहचाना नहीं जाता। तो पहचान और भाव वासन का आचार्यों का आशय रहा है वो बात खुली कर दी कि आशय क्या रहा है, ज्ञान माता कह रहे कि पहचान कराने का आशय है। इसलिए उसमें भी चेतनता मैंने त्रिकाली गुण चैतन्य स्वभाव, चेतनता यद्यपि आत्मा का लक्षण है और व्याप्ति अति व्याप्ति रही तथापि वह शक्ति मात्र है और दृष्ट है, शक्ति रूप है और दृष्ट है, उससे भी पहचाना नहीं जाता।
बराबर,
उसकी जो व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है उस दर्शन और ज्ञान में भी ज्ञान दर्शन से पहचाना नहीं जाता। ज्ञान साकार है, प्रकट है, अनुभव गोचर है। अनुभव गोचर होने से ये अनुभव पद्धति का मुद्दा है, इसलिए उसके द्वारा ही आत्मा पहचाना जा सकता है। इसलिए यहाँ इस ज्ञान को ही प्रधान करके आत्मा का तत्व कहा है। आत्मा तो तत्व है ही, लेकिन आत्मा का तत्व कहा,
ज्ञान को
कहा, ज्ञान को आत्मा का तत्व कहा है, वो तत्व का तत्व है। क्या बात थी कि ज्ञान के पर्याय का उपकार समझो कि जहां से हमको हमारे निज परमात्मा का पता
चलता है,
चलता है। एक दफे पता मिल गया फिर पहुंचना आसान है, और बिना पता मिले कितना भी घूमो पहुंचने की कोई परिस्थिति बनने वाली
नहीं
है। जैसे वो आगरा में आए हैं जाने पहले पहले, किसी के घर पे जाना है पता नहीं है और घर के बगल में खड़े हैं,
आत्म तत्व पहचानने में आता है तो समय बिजली की चमक जितना रहता है वो रुकता क्यों नहीं?
वो अनुभव का काल में है, पहचान तो हमेशा चालू रहती है, पहचान जाती नहीं। एक दफे आपको पहचान लिया, आप कोई भी वेश धारण करके आ जाओ, हम आपको पहचान लेंगे। क्या पहचान एक ऐसी चीज है, जाती नहीं, संस्कार चलता है, उस संस्कार का फल आए बिना रहता नहीं, अनुभव में आए बिना रहेगा नहीं। तो जो बहुत कम टाइम में आती है वो तो अनुभूति है, निर्विकल्प अनुभूति का काल बहुत अल्प है।
उस समय आनंद भी तो आता है,
आनंद आता है, अनुभूति के काल में आनंद आता है, भले ही इसका प्रारंभिक काल अल्प हो, उसमें ताकत बहुत है।
बराबर,
क्या है?
ताकत बहुत है,
ताकत बहुत है। जैसे चिंगारी में सारे गांव को जलाने की
ताकत
ताकत है, ऐसे कि अनुभूति की चिंगारी है कि जिस काल में केवल ज्ञान की लब्धि पैदा होती है, जिस काल में अनंत भव का नाश, अनंत भव का जो बीज है वो जग जाता है, अनुभूति वाले आत्मा को आनंद भोगता
नहीं।
और सातवीं नारकी में भी अनुभूति हुई तो वेदना, नरक की वेदना छूट जाएगी
बराबर
और आनंद का अनुभव हो जाएगा। कितनी बड़ी ताकत है देखो, काल अवश्य अल्प है, फिर भी ये काल बढ़ता जाएगा और एक काल ऐसा आएगा कि अनुभूति ही अनुभूति रहेगी
नहीं
और अनुभूति मिटेगी नहीं, ये बात हो जाएगी।
ऐसा लगता है जैसे हमने कि भोजन किया वो बढ़िया, कभी कभी भोजन किया वो पकवान तो फिर अब भोजन नहीं।
हाँ,
ख्याल में
एक बात होती है कि जब एक दफे आनंद की अनुभूति होती है, उसको ऐसी भावना जगती है, समय सर्वला तक है कि मेरी अनंत कालावली ऐसे आत्म तत्व के भोगवतम भोगवता में ही रह रहा करे, फिर वो बाहर आना है ही। तो स्वाद ले लिया ने, स्वाद चख लिया तो एक ऐसा अमृतमयी शांति, सुधामयी शांति का स्वाद आएगा,
परम शांति का,
परम शांति का, के और सब स्वाद फीके लगेंगे। कैसे लगेंगे?
फीके लगेंगे। ऐसा भी तो होता है सर कि मैं पहले नहीं कभी गई था, जब अनुभूति हो रही है आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा, ऐसा ख्याल रखना चाहिए।
हाँ, ऐसी भावना कि मैं इसमें ही रहना चाहूंगा। तो मतलब क्या है कि जो पहचान कराने का आचार्य श्री का अभिप्राय है वो जयचंद्र जी ने खोला है आखिरी कलश में, कि यहाँ से वो निश्चय कराना चाहते हैं कि जिस बुद्धि है तो आहार पानी हवा के बिना जीवन नहीं चलेगा। हाँ, ये आधार बुद्धि कैसे छूटे कि मेरा आधार मेरा ध्रुव स्वरूप ही है, ऐसी पहचान आएगी, ऐसे भावभाषण होगा तब ये बुद्धि मिटेगी। इसके पहले जाने वाले नहीं, कुछ भी कर ले, जाग कर ले, शास्त्र के शास्त्र पढ़ ले, कुछ भी कर ले, ये निश्चय हुए बिना उल्टा निश्चय छूटेगा नहीं, ये अभिप्राय हुए बिना उल्टा अभिप्राय मिटेगा नहीं। तो हमारे जो विपरीत अभिप्राय हैं अनेक प्रकार के, वो कब छूटता है, कैसे छूटता है, कहाँ छूटता है, किस स्टेज में छूटता है, उसको हमें चालू कर हमें देते हैं। क्या दृष्टांत दिया आचार्य नारायण ने कि इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है, घड़ा के पर्याय से घड़ा वस्तु की अनुभूति हुई, इस प्रकार कर्म मोह आदि अंतरंग परिणाम विभाव परिणाम भाव कर्म तथा लोक कर्म शरीर आदि बाह्य वस्तुएं सब उद्गल के परिणाम है, उद्गल के परिणाम है उतना ही नहीं आत्मा के तिरस्कार करने वाले हैं, उनमें यह मैं हूं इस प्रकार और मेरे में यह कर्म मोह आदि अंतरंग तथा नव कर्म शरीर आदि बहिरंग आत्म तिरस्कारी उद्गल परिणाम है, इस प्रकार वस्तु के अवैध से जब तक अनुभूति है तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध मैंने अज्ञानी है। हम भी परतत्व के साथ अभेद अनुभूति कर रहे हैं, ये हमारी अज्ञानता है। अनुभव प्रधानता से बात लेते हैं, अज्ञानता में भी अनुभव करता है कि देखो आपका अनुभव क्या, आपको अनुभव क्या हो रहा है, क्यों कि उल्टा अनुभव से ले जाना है सुल्टा अनुभव। प्रयोग को समझाने के लिए, परिणाम को समझाने के लिए उल्टा परिणाम का दृष्टांत देते हैं, क्या हो रहा है तुम्हारे में। एक मुद्दा और भी उठाया आचार्य महाराज ने कि ये जो कर्म नौकर्म भाव कर्म नौकर्म है वो उद्गल के तो है, पर तत्व तो है, लेकिन आत्म तिरस्कारी है। क्या है?
आत्मा का तिरस्कार करने वाले,
तुम्हारा तिरस्कार करने वाला है। जो तुम्हारा तिरस्कार करता है उसको तुम प्रेम करते हो, पर उतना प्रेम करते हो, उतना प्रेम करते हो कि अभेद अनुभव करते हो। कितनी बड़ी गलती है तुम्हारी। जैसे कोई खून करने वाले से मैत्री करे तो जिसको मालूम है वो कहेगा कि कितना मूर्ख और बेवकूफ है कि मरने वाला है, तभी तो उसकी मैत्री करता है। क्यों इसकी मैत्री करता है? मर जाएगा बेटा वो आदमी, तो उसका खून करके उसकी संपत्ति लूटने वाला है और इसलिए तो उनके समीप गया है, और उसको भान नहीं है तो मैत्री करता है और मरेगा भी। वैसे भाव कर्म नौ कर्म आदि आत्म तिरस्कारी है, तुम्हारा तिरस्कार करने वाला है, उसमें तो अपनापन करते हो, कितनी बड़ी अज्ञानता है। परिवार में जब कोई बच्चा पैदा होता है सब खुशियां मनाते हैं, क्या करते हैं हमारे यहाँ लेखक? ज्ञानी की नजर में क्या होगा हमारा? ये लोग कितने मूर्ख हैं कि जिसमें अपनत्व करते हुए उसका आत्मधन लुटाया जाता है, उसका ज्ञान आनंद आदि जो संपत्ति है वो धन की लूट होती है उसको, और खुशियां मनाता है। हैप्पी बर्थडे, क्या खुशी का जन्मदिन है, इसे उल्टी गाड़ी चलती है। और लड़के के वहां लड़का आता है तो क्या बोलते हैं संसार को, देखो भी ये मुड़ी का ब्याज है और मुड़ी से भी ब्याज अधिक प्यारा होता है, क्या इतनी मिठास लेता है, उतनी मिठास लेता है। जब बच्चा पेट में आता है तब से मालूम तो पड़ ही जाता है, तब से उनका उत्साह बढ़ता रहता है, जन्म होता है और खुशी हो जाती है कि चलो कुछ तबीयत में बिगाड़ नहीं हुई और बच्चा आ गया घर। फिर वो हंसता है और रुष्ट करता है, रोता है तो चिंता करता है, फिर वो बोलना लगता है तोतला बोलता है तो और मीठा लगता है। अपनत्व होने से इसकी तोतली भाषा भी मीठी लगती है। हमको श्री गुरु के वचन कितने मीठे लगे बराबरी कर देता है कि कितने मीठे लगे प्रत्येक वचन, कितने प्रत्येक वचन उतने मीठे लगने चाहिए। एक मीठा लगा दूसरा मीठा नहीं लगा वो नहीं चलेगा। इसकी तोतली भाषा में मीठी लगती है तो पूरी साफ बोलेगा तो अच्छी मीठी लगेगी, इसमें क्या कहने की सवाल है। पास पढ़ते हैं स्कूल में जाता है वो है वो है वो है, बच्चा भी इसकी माँ को पहचानता है। घर में तो और भी स्त्रियां होती है लेकिन इसकी माँ को वो पहचानता है, आवाज से पहचानता है, हाथ में गोद में लेते हुए तो पहचानता है कि इसकी गोद है दूसरे की नहीं, तो वहां से मिठापन उसका मिठास चालू होता है। मनुष्य जन्म लेता है बचपन से ये मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, 8 साल के बाद तो कोई समझने के लायक होता है, सबसे पहले समझने के लायक होता है तो 8 साल के बाद होता है प्रयोजन भूत को। इतना जहर पी लेता है आदमी मनुष्य अपनापन करके कि फिर वो अपनापन तोड़ना उसमें पसीना आ जाता है। त्याग करना आसान है, मोह का त्याग करना आसान नहीं है।
बराबर।
वस्तु का त्याग करना आसान है, वस्तु के प्रति मोह का त्याग करना आसान नहीं है।
बराबर।
इसमें पसीना आएगा और ये अपनत्व नरक निगोद में ले जाएगा।
जी
देखिए आज जो कतल खाना लगा करके जो मनुष्य बैठा है उसके पीछे कौन सा कारण है? उनके पीछे एक ही कारण के मेरे परिवार को मुझे ठीक रखना है।
हाँ जी।
मेरे परिवार की अनुकूलताएं मुझे होनी चाहिए। अकेले को तो क्या चाहिए, घंटा दो घंटा परिश्रम करे तो भी पेट भर जाएगा।
बराबर।
अकेले को ज्यादा नहीं चाहता है, मरता है परिवार के पीछे। क्या करता है, कभी भूखा रहता है, कभी तृषा रहता है, कभी नींद नहीं लेता, कभी परिश्रम कितना भी कर लेता है थक जाता है, किसके पीछे? ये नौ कर्म में अपनत्व है। तो उसमें और वो कतल खाना लगाने वाले का जो अभिप्राय है और हमारे हम कतल खाना नहीं लगा रहे हैं, हमारा अभिप्राय ऐसा है, तो अभिप्राय में तो दोनों एक से हो गए।
बराबर।
गुरुदेव कहते थे कि ऐसा अपनत्व करने वाला जी आज नहीं तो कल कतल खाना लगाएगा, और एक बार नहीं लगाएगा, ये अभिप्राय नहीं मिटेगा तो अनंत बार लगाएगा।
बराबर।
इतना बड़ा अपराध होने के बावजूद भी हम नॉर्मल रूप से अपने बच्चे को प्यार करते हैं, अपने परिवार के सदस्य को प्रति प्रेम रखते हैं, अपनत्व कर लेते हैं। तत्वज्ञान की तो चर्चा सूक्ष्म से सूक्ष्म कर लेंगे, लेकिन घर में प्रवेश होते ही ये मेरा घर और ये मेरा परिवार, विकल्प नहीं करना पड़ेगा। बिना विकल्प अपनापन परिणमन में चालू हो जाएगा, चालू रहेगा। और ये इतना सामान्य लगता है क्योंकि सब ऐसा ही करता है, कोई पड़ोसी की इतनी चिंता नहीं करते जितने परिवार के करते हैं। एक लड़का स्कूल से घर नहीं आया तो बेचैन हो जाएगा, दो घंटा हो गया, चार घंटा हो गया, पड़ोसी का लड़का नहीं आया तो कोई चिंता नहीं करते। अरे भी आ जाएगा, क्या चिंता करते, खेलता होगा। और अपने वाला नहीं आएगा तो कई कल्पना हो जाएगी, अनेक प्रकार की कल्पना कर बैठेगा। इतना सामान्य हो गया है कि ये बहुत बड़ा अपराध है जो संसार में अनंत परिभ्रमण का कारण है, वो नजर नहीं आता। इस गाथा में आचार्य श्री इस पर ध्यान दिलाना चाहते हैं।
हाँ जी,
कि देखो तुम कहाँ हो, कहाँ खड़े हो। तुम जहां खड़े हो वहां से तुमको आगे बढ़ना होगा, जहां खड़े हो वहां से तुमको कदम उठाना पड़ेगा। खड़े हो कहीं और कदम कैसे उठाना, ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं। तो ध्यान देना है कि तब तक तुम जीव अज्ञानी है, इसलिए बहुत गंभीरता से हमें प्रयास करना है परिवार के बीच में रह करके कुटुंब प्रतिबंध छोड़ने का प्रयास करना
है,
तभी तो एक बंद होगा। जैन दर्शन में चतुर्थ गुण स्थान गृहस्थ दशा में होता है, पंचम गुण स्थान भी गृहस्थ दशा में होता है, इसको भी श्रावक कहते हैं, और छठवें गुण स्थान में श्रमण दशा है, श्रावक दशा और श्रमण दशा। ये जो पद्धति है अनादि अनंत, ये पद्धति है, गुण स्थानों की पद्धति कभी कभी बदलती नहीं। अनंत तीर्थंकरों से लेकर के सब एक ही पद्धति में चले। ये पद्धति क्या सूचित करती है कि तुम पहले त्याग मत करो, पहले तुम मोह का त्याग करो। जिसका तुमको मोह है उसके साथ रहकर के उसका मोह को तोड़ो।
बराबर,
फिर त्याग करना तो आसान है। हमारे शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ जैसे चक्रवर्ती पद में जो तीर्थंकर थे, उन दिगंबरी दीक्षा धारण करके जंगल में चल बसे, कोई ताकत नहीं लगानी पड़ी। जैसे नाक में से लैंग निकाल देते हैं जब वजन हो जाता है, जब कफ आता है, भारी हो जाता है, रोक नहीं सकते, वैसे उनको अपना तो चतुर्थ संस्थान में जन्म से लेकर छूट गए, क्योंकि आज जन्म मोह के आगे थे, वो प्रयोग करते गए, मोह का चारित्र मोह को तोड़ने का प्रयोग करते गए। इतनी परिस्थिति आई कि उनके बीच में रहने के लिए बोझा लगने लगा, इतना बोझा, इतना बोझा कि रह नहीं सके, सकते ही नहीं। इनके परिवार तो बहुत बड़े होते हैं, कल्पना भी हम नहीं कर सकते इतना बड़ा परिवार होता है। उन लोगों को क्या प्रार्थना नहीं करते होंगे? तीर्थंकर देव को तो मोह टूटा, लेकिन दूसरे तो मोह वाले थे, वो तो कहेंगे ना कि आपको जैसे रहना है वैसे रहो, महल में नहीं रहना है तो हमारे महल के बगल में बहुत अच्छा गार्डन भी बनाया है, इसमें एक पर्णकुटी बना लीजिए जैसा आप चाहे वैसा, घास फूस की, और उसमें रह जाइए, लेकिन हमारे नजर के सामने तो रहोगे। बोले कि आपका मोह बोलता है। क्या बोलता है? ये आपका मोह बोलता है, मेरा मुंह टूट गया है। मेरे लिए तो कहीं भी रहना, मोह रहित बीच रास्ता में रहना, और आप मोह के निमित्त हो। अभी तक मेरा अल्प राग था, मैं साथ में रहा, मेरा राग नहीं रहा मैं साथ में कैसे रह सकता, मेरे से वो पॉसिबल नहीं है, मैं तो ये चला। बहुत रोते हैं वो लोग, क्या होता है इतना रुदन करते हैं, इतना रुदन करते हैं कि देखने वाले को रुदन हो जाए, रोना आ जाए, फिर भी वितरागता होती है। ये निर्दयता नहीं है क्या?
निर्मोहता है।
ये निर्दयता नहीं है, वितरागता है, बस वो जंगल में चले जाते हैं ज्ञान ध्यान में। इस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं कि इस काल में केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर दशा को। तो ये अपनत्व तोड़ने का प्रयास पुरुषार्थ इन बीच में रहकर के होता है, मनुष्य की भूमिका में ये प्रयास चालू होता है। और ज्ञान दशा में भिन्नत्व होता है तो भी अंतराग रह जाता है, वहां तक वो साथ में रहते हैं। तो राग टूटा कि बात पूरी हो गई, खत्म। उनके परिवार वाले, निराग के परिवार वाले मंदन करने को आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, उसमें वो भी आते हैं, लेकिन वो मेरे वाले आए नहीं, ऐसा ऐसी नजर नजर में ऐसी नजर नहीं होती कि वो मेरे वाले आए, जैसे दूसरे हैं वैसे वो ही हैं, मेरे लिए तो सब एक से हैं, यानी ज्ञान के ये मात्र है। क्या है? नहे है न उपाले भी, ये मात्र है। ऐसे वितरागता हो जाती है, उन वितरागता की नील यहाँ से चालू होते हैं कि अज्ञान तोड़ो। पहले सबसे अज्ञान तोड़ने से ही अपना तो टूटेगा, अपना तो टूटेगा तो अज्ञान मिटेगा। बात हो रही शास्त्र की नहीं रही, अपनी हुई। क्या हुई? शास्त्र की ये बात नहीं है, बात अपनी है। अभी से घर जा करके तो है ही, प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे परिवार वाले को इधर बैठे हैं तो हम अपनत्व कर अपनत्व के मेरे मेरे हैं इस नज़र से देखेंगे कि बहुत बड़ा अपराध हमारा चालू है, ऐसा हमें ध्यान में लेना चाहिए। सुनते ही चोट लगनी चाहिए और प्रयास चालू हो जाना चाहिए। इस सुगानी जी के वचनानुसार के सुनते ही चोट लगने चाहिए और प्रयास चालू हो जाना चाहिए। एक पात्रता का, वर्तमान पात्रता का एक शुभ लक्षण है कि सुनते ही प्रयास चालू करता है। ये तत्वज्ञान कोई कोरी कोरी बात नहीं है, ये तत्वज्ञान कोड़ा विकल्प वाली बात नहीं है, ये तो प्रयास वाली बात है। सुनते ही प्रयास हुए ऐसी बात हुए, क्यों कि अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे सामान्य जन भी समझ लेते हैं कि ये तो बात करता है, इसका मुंह तो वैसा का वैसा ही चालू है। बात करता है कि राग से मैं भिन्न हूं, बात करता है कि एक समय की शुद्ध पर्याय से मैं भी भिन्न हूं, और परिवार में तो उतना ही मोह दिखता है। परिवार में कुछ नरम गरम होता है तबीयत से तो खुद को कुछ हो जाता है, अरे इसको क्या हो गया, और मैं ऐसा करूंगा तो उसको क्या लगेगा, मैं ऐसा करूं तो उसको क्या लगेगा। ये सब प्रतिबंधक भाव है, मोह के कारण मोह रूप है। तो ये जो बातें हैं वो बातें नहीं रहे लेकिन हमारे प्रयोग का साधन हो जाए, परिवार में सास रहना ही उदय है, उदय है, उदय। और वो उदय हमारा पूर्व कर्म के अनुसार है। तो पूर्व कर्म के अनुसार हम परिवार के बीच में आ पड़े हैं और ममत्व करके, अपनापन करके, अज्ञान से नए बहुत बुरे कर्म का निबंधन करते हैं। अगर यही परिवार को हम प्रयोग का साधन बना करके भोग तोड़ने का प्रयास और प्रयोग करेंगे तो दूर क्या, या तो ऐसा करो या तो ऐसा करो, दो ही काम हो सकता है। एक काम ऐसा करो तो दूसरा नहीं होगा, ये करो तो उसका वो नहीं होगा। अब क्या करना है वो हमें पसंद करना है,
कोई भेद ज्ञान का निमित्त बनाना है।
हाँ, भेद ज्ञान का निमित्त बनाना है, भिन्न है ये तो गाथा, एक एक गाथा में भेद ज्ञान का विषय चला है, यहाँ बुद्धि का विषय लिया है। अपनत्व की बुद्धि है तब तक अप्रतिबुद्ध है, ऐसी बुद्धि है, बुद्धि माने अभिप्राय
देवालय में प्रतिमा,
ये स्वरूप मेरा ही है।
हाँ
ऐसा लगता है,
ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा ही अपना ही स्वरूप है।
ऐसा नहीं ये कि भगवान महावीर की है या
मेरा स्वरूप है,
मेरा,
ठीक है। हमने एक जिनेन्द्र दर्शन पे एक आर्टिकल लिखा है, तत्वानुशीलन में है, आप पढ़ लेना। जिनेन्द्र दर्शन कैसे किया जाता है कि भगवान में जो प्रसिद्ध हुए ऐसे कुछ गुण हैं, उसमें वीतरागता प्रसिद्ध है,
ऐसा भी आया कि शब्द नहीं,
परिपूर्ण अंतर्मुख का प्रसिद्ध है, परम शांति प्रसिद्ध है, और केवल ज्ञान आदि प्रत्यक्षता भी प्रसिद्ध है। उनके दर्शन करते हुए ऐसे हमारे गुण आविर्भाव हुए, मैं ऐसा हूं, मेरा ऐसा स्वरूप है, मैं ऐसा हूं, ऐसा लेकर के अपने गुण को आविर्भाव करने का वहां भी प्रयोग करना है। क्या है, विकल्प नहीं करना है, प्रयोग करना है। आत्मकल्याण की तीव्र भावना ऐसे अनेक प्रकार के, हर प्रकार के, विभिन्न प्रकार के प्रयोग की प्रेरक होती है। क्या है
प्रेरक
भावना जो होती है के प्रयोग में ले जाती है, परिणाम में ले जाती है प्रयोग के दौरान। तो भावनापूर्वक दर्शन करो, भावनापूर्वक ज्ञान करो, शास्त्र ज्ञान, शास्त्र स्वाध्याय भी तीव्र भावना में आकर के करने से जो प्रयोग का अंगुल निर्दोष मिलता है उन वचनों में, उनका प्रयोग हमारा चालू हो जाता है। और फिर ये रुखे विचार या रुखे विकल्प नहीं रहेंगे। इसलिए भावना के प्रधानता शुरू से ही मुमुक्षु के परिणाम में होनी चाहिए। ये भावना मुमुक्षु के शुरुआत से लेकर के ज्ञान दशा तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसी एक भावना की प्रधानता होती है। पूज्य बैंसरे ने तो इस पर 21 नंबर का एक बोल लिखा है, वचनामृत है, कि अंतर में से पैदा हुई, उत्पन्न हुई भावना रागद्वेष पूर्वक उत्पन्न हुई नहीं, किसी से घर में झगड़ा हुआ और वैराग्य आ गया वो बात नहीं, कोई मर गया तो वैराग्य आ गया वो बात नहीं, राग द्वेष से उत्पन्न हुई नहीं, चैतन्य में से, आत्मा में से, भीतर में से उत्पन्न हुई भावना कभी निष्फल नहीं होती।
बराबर,
अगर ऐसी भावना निष्फल होवे तो 14 ब्रह्मांड को शून्य हो जाना पड़े।
बराबर।
यह बात अनंत तीर्थंकरों की कही हुई है, ऐसा करके लिखा है। मतलब भावना में इतना बल होता है सही भावना में कि उसकी सिद्धि अवश्यंभावी है ही, वो कोई निशंक निर्विवाद विषय है। भावना में रहना आना ये सबसे बड़ी बात है। तो इस तरह यहाँ भी कहते हैं कि जब कभी जैसे रूपी दर्पण के स्वच्छता स्वपर के आकार का प्रतिभास करके करने वाले हैं और उष्णता और ज्वाला अग्नि की है, उसी प्रकार रूपी आत्मा की तो अपने को और पर को जानने वाली नात्र का ही है और कर्म तथा नव कर्म पुद्गल के हैं। इस प्रकार स्वतः अथवा परोपदेश से, स्वतः अथवा परोपदेश से जिसका मूल भेद विज्ञान है, ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी तभी आत्मा ज्ञानी यानी प्रतिबुद्ध होगा। ज्ञान दशा कैसे आएगी ये बात में उन्होंने बताई है कि देखो तुम तो चैतन्य दर्पण हो, ज्ञान दर्पण हो, और चीजें द्रव्यकर्म भावकर्म नवकर्म दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले बिंब है, तुम्हारे कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, तुम भिन्न उसको भिन्न देखो, अपनापन उसमें मत देखो, बस भिन्न देखते ही जिसका मूल भेद विज्ञान है ऐसे अनुभूति उत्पन्न होगी। और ऐसा भेद विज्ञान किससे होता है कि या तो स्वतः किसी को होता है, जिसको पूर्व संस्कार होता है उसको स्वतः होता है, जिसको पूर्व संस्कार नहीं होता है उसको ज्ञानी प्रत्यक्ष ज्ञानी के उपदेश में होता है।
बराबर।
निसर्ग अधिगम अजवा ये बात कही। जो निसर्ग जो होता है पूर्व काल में ज्ञानी का योग मिला है और संस्कार मिला है तो वर्तमान भूमि में स्वतः होता है, और ऐसा योग नहीं बना हो तो इसके लिए ज्ञानी चाहिए चाहिए और
चाहिए। संकित के कारण का कारण है।
हाँ?
संकित के कारण का कारण,
कारण के कारण है। पहला
संकित यही
समय हो चुका है।